कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम न्यायियों की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक के 11वें अध्याय के 27वें पद में इसराइल के परमेश्वर को न्यायी कहा गया है। परमेश्वर का जीवित वचन और हमसे क्या कहता है, ये सुनने से पहले आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पास धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पास धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है, तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पास धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पास धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज भी फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, इन दिनों हम न्यायों की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि इप्तह को गिलादियों ने अपना न्यायी बना दिया और इप्ता अमोनियों को हरा कर घर लौटा तो उसकी पुत्री उसका स्वागत करने सबसे पहले बाहर आई। वह नहीं जानती थी कि इप्ता ने परमेश्वर से शपथ खाई थी कि वह अमोनियों पर विजय हुआ तो उसके घर में से जो भी बाहर आकर उससे भेंट करेगा उसे वह परमेश्वर को अर्पित कर देगा। उसने वचन निभाया और अपनी पुत्री को परमेश्वर के लिए अलग कर दिया। इन सारी बातों को हमने देखा था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके पूर्व आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि सचमुच में आप दया से भरे हुए परमेश्वर हैं जो सदैव हमसे प्रेम करते हैं। हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहन जो इस समय आपके वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं, आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, हमारी विनती है कि आप प्रत्येक को अपने बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दें, उन्हें साहस दें ताकि वो आप पर भरोसा कर सकें। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, जो निराश हैं, जो अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, जो अपने नौकरी की तलाश में हैं, जो पारिवारिक कलह से डूबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, पिता परमेश्वर हर एक पर अपने अनुग्रह प्रदान करे, ताकि वे भी इस संसार में रहकर इप्ता के समान विजय को प्राप्त कर सकें। आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, इप्ता 6 वर्ष तक उनका न्याय रहा, तो इन 6 वर्षों में क्या होता है हम देखते हैं अध्याय 12 में। विषय है एप्रेमियों की ईर्ष्या, इप्सान, एलोन और अब्दोन के चरित्र। आइए देखें एप्रेम को दंड। न्यायों की पुस्तक 12 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, तब एप्रेमी पुरुष इकट्ठे होकर सापोन को जाकर इप्ता से कहने लगे कि जब तू अमोनियों से लड़ने को गया तब हमें संग चलने को क्यों नहीं बुलवाया, हम तेरा घर तुझ समेत जला देंगे। इप्ता ने उनसे कहा, मेरा और मेरे लोगों का अमोनियों से बड़ा झगड़ा हुआ था और जब मैंने तुमसे सहायता मांगी तब तुमने मुझे उनके हाथ से नहीं बचाया। तब यह देख कर कि तुम मुझे नहीं बचाते, मैं अपने प्राणों को हथेली पर रखकर अमोनियों के विरुद्ध चला और यहोवा ने उनको मेरे हाथ में कर दिया। फिर तुम अब मुझसे लड़ने को क्यों चढ़ आए हो? मेरे मित्रों, आपको याद होगा कि अध्याय 8 पद 1 में यही एप्रेमी गिदोन से भी विवाद करने गए थे, क्योंकि मिद्यानियों के विरुद्ध युद्ध में उसने उन्हें नहीं बुलाया था। अब इप्ता के साथ भी वे बड़े ही कठोर रूप से व्यवहार करते हैं और पूछते हैं कि उसने उन्हें अमोनियों से युद्ध करने क्यों नहीं बुलाया। एप्रेमियों का ईर्ष्यालु स्वभाव आगे चलकर विद्रोह का कारण बना। जब इसराइल राज उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में विभाजित हो गया था तब एप्रेम विद्रोह का केंद्र था, जिसका मुख्य कारण था उनका ईर्ष्यालु स्वभाव। मेरे मित्रों, आज कलीसिया में भी ईर्ष्या व्याप्त है। यह हमारी बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है। फिलिपियों की कलीसिया को पत्र लिखते समय पौलुस ने निर्देश दिया, जिसे हम फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, विरोध और झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ध्यान दें, विरोध और झूठी बड़ाई का अर्थ दूसरा संभावित अर्थ है परम घमंड और ईर्ष्या। ये 2 बातें आज भी कलीसिया में समस्या का कारण है। जब मैं किसी व्यक्ति को कलीसिया की व्यवस्था के संबंध में शिकायत करते सुनता हूँ कि व्यवस्था उसकी राय में उचित नहीं है, तो मैं सोचने लगता हूँ कि क्या वह घमंडी है। मेरे मित्रों, जब कोई हर समय प्रचारक की आलोचना करता है तो मैं सोचता हूँ कि उसका मन ईर्ष्या से भरा है। अतः वहां भी ईर्ष्या की ही समस्या थी। एप्रेमी इप्ता का घर फूंक देना चाहते थे, अर्थात उसे और उसके परिवार को भी जला देना चाहते थे। हम न्यायों की पुस्तक 12 अध्याय उसके 4 से 6 पद में पढ़ते हैं, तब इप्ता गिलाद के सब पुरुषों को इकट्ठा करके एप्रेम से लड़ा और एप्रेम जो कहता था कि हे गिलादियों, तुम तो एप्रेम और मनुष्य के बीच रहने वाले एप्रेमियों के भगोड़े हो, और गिलादियों ने उनको मार दिया और गिलादियों ने यर्दन का घाट उनसे पहले अपने वश में कर लिया। और जब कोई एप्रेमी भगोड़ा कहता कि मुझे पार जाने दो, तब गिलाद के पुरुष उससे पूछते थे, क्या तू एप्रेमी है? और यदि वह कहता नहीं, तो वे उससे कहते, अच्छा शिबोलेत कह, और वह कहता शिबोलेत, क्योंकि उससे वह ठीक बोला नहीं जाता था। तब वे उसको पकड़कर यर्दन के घाट पर मार डालते थे। इस प्रकार उस समय 42,000 एप्रेमी मारे गए। मेरे मित्रों, गिलादियों ने एप्रेमियों को हरा दिया और उनके क्षेत्र में यर्दन के घाट पर अधिकार कर लिया, जिससे कि एप्रेमी बचकर ना भाग पाए। उन्होंने एप्रेमियों की पहचान के लिए एक शब्द चुन लिया, शिबोलेथ, क्योंकि इसका एक व्यंजन एप्रेमी उच्चारण में नहीं कर पाता था। यदि किसी का शिबोलेथ उच्चारण सही नहीं हुआ तो वह समस्या में पड़ गया। वे इस शब्द में ह का स्वर नहीं निकाल पाते थे। हम न्यायों की पुस्तक 12 अध्याय के 7 पद में पढ़ते हैं, इप्ता छह वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा। तब इप्ताह गिलादी मर गया और उसको गिलाद के किसी नगर में मिट्टी दी गई। मेरे प्रियो, इप्ताह की मृत्यु के साथ ही छह ऐतिहासिक वर्ष समाप्त हुए। दसवां न्याय इबसान आया। अगले तीन न्याय सर्वथा शून्य ही रहे। उन्होंने इसराइल की व्यवस्था यथोचित रूप से नहीं की। हम न्यायों की पुस्तक 12 अध्याय उसके 8 से 10 पद में पढ़ते हैं, उसके बाद बेतलेहम का निवासी इबसान इसराइल का न्याय करने लगा और उसके 30 बेटे हुए और उसने अपनी 30 बेटियां बाहर ब्याह दी और बाहर से अपने बेटों का ब्याह करके 30 बहू भी ले आया और वह इसराइल का न्याय 7 वर्ष तक करता रहा। तब इबसान मर गया और उसको बेतलेहम में मिट्टी दी गई। मेरे मित्रों, इबसान बेतलेहम का निवासी था। बेतलेहम यहूदा प्रदेश का एक नगर था जो दक्षिणी क्षेत्र में आता था। उसके 30 पुत्र और 30 पुत्रियां थी। मैं सोचता हूं कि उसे अपने पुत्रों के लिए पत्नियां खोजने की अपेक्षा अपनी पुत्रियों के लिए पति खोजने में परिश्रम करना पड़ा होगा। मेरे विचार में तो उसके शासन काल के 7 वर्षों में भी वह उनके लिए पति नहीं खोज पाया होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इबसान ने अपना समय परिवार के प्रबंध में ही लगाया। मेरे मित्रों, इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु यह उसकी बुलाहट नहीं थी। उससे तो इसराइलियों की देखभाल करनी थी। मित्रों, आज उत्तरदायित्व के विषय बहुत अधिक मूर्खता पनप रही है। एक बार मैंने किसी प्रचारक की कहानी सुनी जो प्रचार करने गया था। उसका छोटा सा पुत्र उससे बात करना चाहता था, अतः उसने बैठकर अपने पुत्र से बात की और प्रचारक का समय गंवा दिया। उसकी बहुत प्रशंसा की गई। मित्रों, वह व्यक्ति पहले तो अपना वचन नहीं निभा रहा था और फिर वह अपने पुत्र को अनुशासनहीन बना रहा था। आप अपना वचन तोड़े बिना भी अपने संतान से प्रेम और रुचि का प्रदर्शन कर सकते हैं। समय के अनुसार प्राथमिकताओं को निभाना पड़ता है और मेरे विचार में वह अपने पुत्र की अधिक अच्छी सुधि ले पाता यदि वह उससे कहता, आपके पिता के पास एक प्रचार का काम है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप निसंदेह अपने पिता से आशा रखेंगे कि वह उसे निभाए। मुझे विश्वास है कि वह बालक मान जाता। तब उससे वह कहता, जब मैं लौट कर आऊंगा तब हम बहुत बातें करेंगे या कल हम बैठकर बातें करेंगे। इस प्रकार उस बालक को अधिक सहायता मिलती अपेक्षा इसके कि उसने उसे समय देकर प्रचार का अवसर ठुकराया। उसने जो किया वह एक बालक को बिगाड़ने का काम था। यह मेरे विचार में है और मैं जानता हूं कि मैं आदर्शवादी सुनाई देता हूं, परंतु मैं इबसान के कामों को स्वीकार नहीं करता। उसने कुछ नहीं किया, वह एक साधारण मनुष्य का चित्रण था। मेरे मित्रों, हम 11वें न्यायी एलोन के बारे में देखते हैं, न्यायों की पुस्तक 12 अध्याय उसके 11 और 12 पद में। उसके बाद जबुलूनी एलोन इसराइल का न्याय करने लगा और वह इसराइल का न्याय 10 वर्ष तक करता रहा। तब एलोन जबुलूनी मर गया और उसको जबुलून के देश के अय्यालोन में मिट्टी दी गई। मेरे प्रिय, इन दो पदों में जो लिखा है वही एलोन का इतिहास है। उसने कुछ नहीं किया, उसका परिवार भी बड़ा नहीं था, उसने केवल मक्खियां मारी। हम 12वें न्याय के बारे में देखते हैं, अब्दोन। न्यायों की पुस्तक 12 अध्याय उसके 13 से 15 पद में लिखा है, उसके बाद हिलेल का पुत्र पिरातोनी अब्दोन इसराइल का न्याय करने लगा और उसके 40 बेटे और 30 पोते हुए जो गदहियों के 70 बच्चों पर सवार हुआ करते थे और 8 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा। तब हिलेल का पुत्र पिरातोनी अब्दोन मर गया और उसको एप्रेम के देश के पिरातोन में जो अमालिकियों की पहाड़ी देश में है मिट्टी दी गई। मित्रों, हम देखते हैं कि अब्दोन ने याइर को अपने स्पर्धा में पराजित करने की अपेक्षा और कुछ नहीं किया। अध्याय 10 में हमने देखा था कि याइर के 30 पुत्र थे और अब्दोन के 40 पुत्र और 30 पोते थे। उसे पुत्रों और पोतों के साथ सड़क पर चलते देखना बड़ा ही दर्शनीय दृश्य होता होगा। कई गधे एक साथ रेंगते होंगे, कैसी झांकी होती होगी। अब्दोन का योगदान मात्र यही था। मित्रों, यह कुछ भी नहीं है। हमने इबसान, एलोन और अब्दोन का इतिहास संक्षेप में देख लिया है। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो रचनात्मक कार्य किया जाए या कहा जाए। आइए अब हम देखते हैं अध्याय 13 में इसराइल का सातवां अपराध, शिमशोन द्वारा आंशिक उद्धार, 40 वर्ष तक पलिस्तियों के अधीन। हम न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय उसके एक पद में पढ़ते हैं, और इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। मेरे मित्रों, इसराइल द्वारा बार बार ईश्वर त्याग, अंततः उन्हें पलिस्तियों के अधीन में कर दिया गया। पलिस्ती संभवतः इसराइल के सबसे कट्टर दुश्मन थे, और इस बार वे 40 वर्ष तक कष्ट भोगते रहे। इस बार जो न्याय हुआ उसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। उसका नाम है शिमशोन। वह सब न्यायों में सर्वाधिक विशेष महत्व का है। उसके पास संभवतः ऐसा महिमामय अवसर था जो किसी अन्य पुरुष को कभी नहीं मिला। उसके लिए सब कुछ अति शुभ था और उसका भविष्य भी उज्जवल था, परंतु उसने सब कुछ गंवा दिया। मेरे मित्रों, वह सातवां और एक प्रकार से अंतिम न्याय था। इसराइल पलिस्तियों के वश में था। शिमशोन उन्हें आंशिक उद्धार ही दिला पाया था। इप्ता के समय जो गृह युद्ध आरंभ हुआ था वह बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गया कि न्यायों की पुस्तक का अंत उलझन में दिखाई देता है। शिमशोन की अगुवाई में उसकी सफलता का भेद प्रकट किया गया है। उसके महाबल और भेद और उसकी चूक का भी भेद प्रकट किया गया है। मैं फिर से कहता हूं कि उसके जैसे महिमामय अवसर को लेकर आज तक किसी मनुष्य का जन्म नहीं हुआ है। आइए हम देखते हैं 13वें न्याय, शिमशोन का जन्म। न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नाम एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। ध्यान दीजिए कि सोरा नगर दान और यहूदा के मध्य था, जो यरूशलेम से कई मील पश्चिम में है। मानोह और उसकी पत्नी के पास कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि वह बांझ थी। अतः शिमशोन का जन्म एक चमत्कार ही था, जैसे इसहाक या यूसुफ या विन्यामिन का जन्म। आइए आगे पढ़ते हैं न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय के 3-5 पद में लिखा हुआ है, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा, इसलिए अब सावधान रह कि न तो तू दाख मधु वा किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर होगा और इसराइलियों को पलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने जन्म से पूर्व ही शिमशोन को चुन लिया था। परमेश्वर ने उसे एक बहुत बड़ा काम करने के लिए उभारा था। उसे इसराइल का उद्धार करवाना था। इसराइल की दशा अति दयनीय थी, क्योंकि वे पलिस्तियों के अधीन थे। मेरे मित्रों, स्वर्गदूत ने शिमशोन की माता को दर्शन देकर कहा था कि उसका पुत्र जन्म से ही परमेश्वर का नाजीर रहेगा, अर्थात उसका चुना हुआ जन रहेगा। गिनती की पुस्तक में हमने देखा था कि नाजीर की मन्नत क्या है। वह 3 गुना थी। आइए देखें, पहला, उसे मदपान नहीं करना था या अंगूर किसी रूप में भी नहीं खाना था। क्यों? क्योंकि मदिरा धर्मशास्त्र में सांसारिक सुख की प्रतीक है। वह मन को आनंदित करती है, और नाजरी को केवल परमेश्वर में आनंद खोजना था। इफिसियों के पत्री अध्याय 5:18 पद में लिखा है, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यदि हम मसीह को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें भी अपना आनंद उसी में पाना है। सच तो यह है कि आनंद पवित्र आत्मा का फल है। हम गलातियों की पत्री 5:22-23 पद में पढ़ते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। मेरे प्रियो, आनंद एक फल है जो पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में उत्पन्न करना चाहता है। नाजिर के बारे में अब दूसरी बात देखते हैं। नाजिर को बाल मुड़ाना मना था। इसका क्या अर्थ है। पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 11 और पद 14 में पौलुस कहता है, क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है। मेरे मित्रों, धर्मशास्त्र के अनुसार लंबे बाल पुरुष के लिए लज्जा का कारण है, फिर भी एक नाजीर लंबे बालों की लज्जा उठाता है। यही कारण था कि उसके सिर पर उस्तरा या कैंची नहीं लगाना था। तब हम तीसरी बात देखते हैं इसके विषय में, उसे मृतक देह के निकट नहीं जाना था, उसे सांसारिक बातों में नहीं फंसना था, उसे अपने प्रियजनों और संबंधियों से बढ़कर परमेश्वर को स्थान देना था। लुका रचित सुसमाचार अध्याय 14 के पद 26 और 27 में प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। मित्रों, इसका सीधा सा अर्थ है कि हम बढ़कर किसी को स्थान नहीं दे सकते। आज हम इससे चूक गए हैं। शिमशोन एक नाजीर था, वह परमेश्वर का जन था और यही उसकी सफलता का भेद है। वह एक महान उद्देश्य के निमित्त चुना गया था और उसकी सफलता परमेश्वर में थी। मेरे मित्रों, दुर्भाग्य से वह परमेश्वर द्वारा दिए गए काम को पूरा करने में सफल नहीं हुआ। आपने पद 5 पर ध्यान दिया होगा कि उसमें क्या लिखा है। शिमशोन ने इसराइल को पलिस्तियों के हाथ से छुड़ाना आरंभ किया। सफलता उसके द्वार पर दस्तखत दे रही थी। उसने अभी आरंभ ही किया था और काम पूरा नहीं किया था। मेरे प्रियो, ऐसे अनेक मसीह विश्वासी भी हैं जो अच्छा आरंभ तो करते हैं परंतु काम पूरा नहीं करते। गलातियों के पत्री अध्याय 5 पद 7 में पौलुस कहता है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। मेरे प्रियो, उनका आरंभ तो बड़ा धमाकेदार था परंतु अंत में सीसी करते रह गए। अनेक जन बाइबल पढ़ना तो आरंभ करते हैं परंतु सड़क के किनारे का बीज हो जाते हैं, अर्थात उपजाऊ नहीं बन पाते हैं। क्रमानुसार वो पढ़ने में असफल हो जाते हैं, अंत तक नहीं पहुंचते हैं। मैं कई वर्षों से परमेश्वर की सेवा में हूं मित्रों, और मैं अनेकों को जानता हूं जो आरंभ तो करते हैं, बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं परंतु अंत नहीं कर पाते। वे अपनी बुलाहट को पूरा कभी नहीं कर पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेवा के लिए आए और उन्होंने सेवकाई छोड़ दी क्योंकि वे उसे पूरा नहीं कर पाए। हम आगे पढ़ते हैं न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय उसके 24 और 25 पद में, जहां पर लिखा हुआ है, और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसका नाम शिमशोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा, और यहोवा का आत्मा सोरा और एस्ताओल के बीच महनेदान में उसको उभारने लगा। मेरे मित्रों, इन पदों में शिमशोन की शक्ति का भेद प्रकट है। उसका बल उसकी भुजाओं में नहीं था जबकि उसने हजारों पलिस्तियों को मारा था। उसकी शक्ति उसके कंधों में नहीं थी जबकि वह गाजा के फाटकों को उठाकर ले गया था। शिमशोन की शक्ति उसके बालों में भी नहीं थी जबकि वह बाल काटे जाने पर निर्बल हो गया था। वह तब ही शक्तिशाली था जब परमेश्वर का आत्मा उसमें था। मित्रों, बाल काटे जाने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ था। उसके बाल उसके नाजीर होने का प्रमाण था। बाल कट जाने पर परमेश्वर का आत्मा उसमें नहीं था। क्यों? क्योंकि वह अपने शपथ से चूक गया था। उसने अच्छा नहीं किया। मेरे प्रियो, आपने दवाओं के विज्ञापनों को देखा होगा कि दवाई खाने से पूर्ण मनुष्य कैसा दुर्बल दिख रहा होता है और दवाई खाने के बाद वही व्यक्ति कैसा बलवंत दिखाई देता है। अनेक मनुष्य शिमशोन को बड़ा दानव समझते हैं परंतु वास्तव में वह बाइबल में या बाहर सबसे बड़ा पल्लू में मुंह छिपाने वाला मनुष्य था। मेरे विचार में वह एक नीरस मनुष्य था। उसके नाम का अर्थ है छोटा सूरज। उसके बाल लंबे थे, वह पहेलियां बुझा सकता था। वह एक बालक की नाई शरारती था। वह स्त्रियों को अपनी हंसी करने देता था वह पौरुषधारी मनुष्य नहीं था। वह बाइबल के नायकों में सर्वशक्तिमान नहीं था। वह एक दुर्बल मनुष्य था। वह अपनी माता के पल्लू से बंधा रहता था और वास्तव में ऐसा ही था जो उसका जीवन था। परंतु जब परमेश्वर का आत्मा उसमें उतर आता था तब वह अत्यंत बलशाली हो जाता था। आत्मा के बिना वह अति दुर्बल होता था। मेरे मित्रों, उसके समय के लोग उसकी शक्ति का भेद जानना चाहते थे। वे नहीं जानते थे कि परमेश्वर अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए संसार की सबसे दुर्बल वस्तु काम में लेता है। वे सोचते थे कि यह साधारण मनुष्य अति सामर्थ्य कार्य कैसे करता है। इसका एक ही उत्तर है, परमेश्वर उसके मध्य में काम करता है, अर्थात परमेश्वर उसके माध्यम से काम करता है। परमेश्वर का आत्मा उसमें उतरता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर शिमशोन के द्वारा अपने लोगों को छुड़ाता है और अपनी महिमा लेता है। आज परमेश्वर आपके द्वारा भी बहुतों को पाप के बंधन से छुड़ाना चाहता है। आपके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा लेना चाहता है। लेकिन क्या आप परमेश्वर के लिए नाजिर होना चाहते हैं? क्या आप अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करना चाहते हैं ताकि परमेश्वर का आत्मा आप में होकर के कार्य कर सके और बहुत सारे लोग जो आपके आस पड़ोस में, इस संसार में, आपके गांव और शहर में पाप के बंधन में पड़े हुए हैं, प्रतिदिन बुराइयां और बुराइयां करते जा रहे हैं, वे नरक की ओर बढ़ते जा रहे हैं और परमेश्वर चाहता है कि वे आपके द्वारा बचाए जाएं। परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आज आप तैयार हैं? मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको निर्णय लेना है। आज आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहते हैं या आप अपने मर्जी से अपना जीवन जीना चाहते हैं? आप किसको चुनना चाहेंगे? निर्णय आपके हाथ में है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि इस समय आप अपने जीवन का सही निर्णय लेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को उपयोग में लाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे।
जाऊं कहां तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे।
आओ दर्शन भिक्षा दे दो,
आओ दर्शन भिक्षा दे दो।
आया हूँ शरण तिहारे,
आया हूँ शरण तिहारे।
जाऊँ कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, हे प्रभु यीशु प्यारे।
छोड़ के।